ये सवालात की चिट्ठे हैं जो मेरे हाथ में हैं, और मेरी ख्वाहिश है कि मैं सबका जवाब दूँ। मुझे आप लोगों की हालत का भी इल्म है, और चूंकि हम लोग तो ऐसे हैं जो बिल्कुल हमेशा दोस्तों की, कॉमरेड्स की और तबके की सूरत हाल को समझते हुए, उसको देखते हुए फिर अपनी बात को रखते हैं। जैसा कि अभी कॉमरेड नज़ाकत यहाँ पे कह रही थी कि औरत को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, कॉमरेड जिसको कोई कमज़ोर समझता है उससे डरता है, नहीं उससे डरता नहीं है, ताकतवर से हमेशा डरता है। आप अंदाजा करें, अनवर कॉमरेड अनवर से भी बैठे हैं और मैं भी, हम जितने आप लोगों से डरते हैं और तो कोई डरता ही नहीं, हम कब आपको कमजोर समझते हैं। ये बात दुरुस्त है कॉमरेड की कि इस पहलू को जरूर देखना पड़ेगा कि क्यों खवातीन की तादाद हमेशा ही कम रही है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन उसके लिए हमें सीरियसली संजीदगी से ये गौर करना पड़ेगा कि कौन कौन से सेक्शन है सोसाइटी में जिसके अंदर हम मुदाखलत करके ख्वातीन की एक बड़ी तादाद को इनकलाब की जानिब जीत सकते हैं। कॉमरेड्स, मेहनत कश तबके की तहरीक अगर एक सीधी लकीर में चलती तो शायद इनकलाब बड़ा आसान होता, क्योंकि हम एक अपनी ताकत के साथ उसके अंदर शामिल होते, सीधी लकीर को एक सीधे तरीके से अपनी कुव्वतों में इजाफा करते चले जाते और उसको उसके मंतकी अंजाम तक, इनकलाब तक पहुंचा चुके होते। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं है, मेहनत कश तबके की तहरीक जो है वो किसी सीधी लकीर में नहीं चलती, उसके अंदर बहुत सारे अप्स एंड डाउन आते हैं। अब उनको समझना, जब तक आप तहरीक को समझेंगे नहीं उसके अंदर मुदाखलत कैसे कर पाएंगे, ये मुमकिन नहीं होता। इसलिए उसको देखना और फिर उसको इनकलाबी तरीकाकार के मुताबिक परखना, ये सबसे बुनियादी फरीजा है इनकलाबियों का। और उसके लिए बाज़ औक़ात मेरे हाथ में एक प्रॉब्लम्स ऑफ एंटरिज्म, यानी मुदाखलत के मसाइल के नाम से एक डॉक्यूमेंट है जो कि मार्च, और हमने इस बार इसको जो किताबचा दिया है दाखिलियत पे, हमारा जो डॉक्यूमेंट आया उसके अंदर हमने इसको ट्रांसलेशन करके ज़मीमे के तौर पर दिया है, और ये मार्च 1959 का लिखा हुआ है, 1959 का लिखा हुआ है, और इसको कॉमरेड टेड ग्रांट ने तहरीर की। आप इसको पढ़ें, इसका कोई एक लफ्ज अगर आज के हालात पे पूरा ना तो ना उतरता हो, बल्कि मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप इसके अंदर से सिर्फ लेबर पार्टी का नाम निकालकर उसके अंदर पीपल्स पार्टी लिख दें तो आपको यह लगेगा कि शायद अभी आज इस कॉन्फ्रेंस के लिए टेड ग्रांट ने यह डॉक्यूमेंट लिखा है। यह होती है मार्क्सिज्म की ताकत, यह होता है मार्क्सिज्म का पर्सपेक्टिव, यह होती है मार्क्सिज्म की सोच, और यह होती है फिक्र। और इसको शुरू कहां से करते हैं? शुरू यहां से करता है कि इट इज नेसेसरी एट वेरियस स्टेजेस, ये जरूरी होता है बास जगहों पर, टू री एग्जामिन एंड एनालिसिस द प्रिंसिपल्स, पॉलिसीज एंड टैक्टिक्स ऑफ द मूवमेंट, बोथ फॉर द बेनिफिट ऑफ ए न्यू मेंबर्स एंड द कंसोलिडेट एंड रिफ्रेश द आइडियाज ऑफ द बेसिक कैडर्स। ये जरूरी होता है कि हम नए सिरे से जायजा लें اور موازنہ کریں، تجزیہ کریں اصولوں کا، پالیسیوں کا، اپنے طریقہ کار کا، جو کہ تحریک کے لیے بھی بہت اچھے ثابت ہوتے ہیں، نہ اس تحریک کے جو طریقہ کار ہے اس کا جائزہ لیں، جو کہ نہ صرف نئے ممبروں کے لیے ضروری ہوتے ہیں بلکہ جو کیڈرز ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہوتے ہیں کہ وہ اپنے آئیڈیاز کو کس طرح سے دوبارہ سے نئے سرے سے ریفریش کریں اور ان کو کس طرح سے نئے سرے سے ان کو جانچیں اور ان کو پرکھیں. یہ سٹارٹ کرتا ہے. اس لیے ہم مداخلت کو اس لیے پیپلز پارٹی کے اندر پیپلز پارٹی کا جائزہ بار بار اس لیے لیتے ہیں کہ موومنٹ کی طرح پیپلز پارٹی بھی بدل جاتی اور پیپلز پارٹی کی طرح طبقہ بھی بدل جاتا ہے. اور اگر آپ بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ آپ اپنے ٹیکٹک تبدیل نہیں کرتے. اور اسی میں کہتا ہے ٹیڈ گرانٹ، کہتا ہے کہ یہ کوئی جو ٹیکٹک ہوتا ہے، جو داخلیت ہے، یہ کوئی اصول نہیں ہے، پرنسپل نہیں ہے کہ جس سے ہم ادھر ادھر نہیں ہو سکتے. بلکہ ٹیڈ کہتا ہے کہ یہ بہت ہی فلیکسیبل ہوتا ہے، کہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم اس میں کتنا فلیکسیبل ہیں. اور اگر اس میں ہم اپنی اپروچ میں فلیکسیبل نہیں ہیں، مطلب لچکدار نہیں ہیں، تو ہم کبھی بھی حاصلات پہ نہیں جا سکتے. مثلا وہ لکھتا ہے کہ آف کورس وی مسٹ بی فلیکسیبل ان آر اپروچ. ہمیں اپنی سوچ میں اپنے بالکل ہمیں لچکدار ہونا پڑے گا. اور اس وقت تک، ورنہ وہ کہتا ہے ورنہ ہمیں جو ماس آرگنائزیشن، جو عوامی تنظیمیں ہیں، تحریکیں ہیں، ان سے ورنہ ہم کٹ جائیں گے اگر ہم بہت ہی ہارڈ اصول اور پرنسپل لے کر بیٹھیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ طبقہ ان اصولوں پر آئے اس کے مطابق چلے، تو پھر ہم کٹ جائیں گے عوامی تنظیموں سے. اور پھر اسی میں جا کر کہتا ہے کہ ہماری ابھی حیثیت کیا ہے، کیا حیثیت رکھتے ہم، کیا ہوتی ہے ایک پارٹی، کیا ہوتی چند سو، چند ہزار. وہ کہتا ہے محنت کش طبقہ اس کو مذاق سمجھتا ہے، اس کا تمسخر اڑاتا ہے ایسی پارٹیوں کا. اور ٹروٹسکی کہتا ہے کہ چند لاکھ، کہتا ہے چند لاکھ بھی پارٹیاں نہیں ہوتی، چند گروہ ہوتی ہیں، وہ گروہ ہوتی ہیں، فرقے ہوتے ہیں، پارٹیاں نہیں ہوا کرتی. اور جب وہ یہ فرقے ہوتے ہیں لاکھوں میں، اور لاکھوں میں برطانیہ میں کہہ رہا ہے، ٹیڈ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم لاکھ دو لاکھ ممبر بھی ہو جائیں تو ہم پارٹی نہیں بن سکتے، فرقہ ہوں گے، ایک سیکٹ ہوں گے اگر ہم علیحدہ ہو جائیں پھر بھی. اور یہ لاکھ دو لاکھ یہ چھوٹی موٹی کامیابیاں اگر ہمارے سروں کو چڑھ جائیں اور ہم اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنا شروع کر دیں تو کچھ نہیں ہوتا. اور اگر برطانیہ کے اندر لاکھ دو لاکھ کی جو ممبرشپ ہے وہ کچھ نہیں ہوتی، کچھ اہمیت نہیں رکھتی، جس کی آبادی میرا خیال ہے چند کروڑ کی آبادی ہے، تو پاکستان جیسے ملک کے اندر جہاں پہ 18 کروڑ آبادی کا ملک ہے، اس کے اندر آپ سینکڑوں لوگوں کو لے کر اپنے سر کو، اپنے دماغ کو بڑا کر لیں، آپ اپنے آپ سے باہر ہو جائیں اور اپنے آپ کو یہ سمجھنے لگے کہ ہم کوئی چیز بن گئے، آپ کچھ بھی نہیں ہیں. اس لیے کہ ہمیں ایک مسلسل عمل کے ذریعے اس کام کو کرتے رہنا ہے. کہیں ہمیں کامیابیاں ملتی، کبھی ہمیں ناکامیاں ملتی، اس کو دیکھنا پڑے گا اور پرکھنا پڑے گا کرنا کیا ہے. مداخلت ہے کیا اور کس میں ہے؟ ایک کامریڈ کا سوال آیا کہ روایت کیا ہے؟ روایت وہ ہے جس کو محنت کا طبقہ بطور طبقہ یہ سمجھے کہ یہی پارٹی ان کے دکھوں کا مداوا ہے، یہی پارٹی ان کے مسائل حل کرے گی، یا اس کو محنت کا طبقہ کوئی تبدیلی کی پارٹی سمجھے، غلط یا صحیح طور پر، یہ ایک دوسری بات ہے۔ اور اس کے اندر اس نے اپنی تحریک کے ذریعے اظہار کیا ہو، لڑائی کی ہو، اس کو ہم روایت کہتے ہیں محنت کش طبقے کی۔ اور محنت کش طبقہ جب بھی تحریک کے میدان میں اترے گا، بار بار اترے گا، وہ اپنی روایت کی جانب جائے گا، پھر اپنی طرف واپس آئے گا، اپنی روایت کی طرف واپس آئے گا۔ لیکن بہت سارے سوالات آئے کہ یہ موجودہ حکومت کے اندر، اس پارٹی کے اندر آپ کیا مداخلت کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ کیا اس پارٹی کی حکومت کو پہلی بار ہے؟ کیا اس سے پہلے پارٹیاں جب آتی رہیں، میرا خیال ہے اگر کوئی لوگ غلط سمجھتے ہیں، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ پارٹی حکومت میں، مسئلہ یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ آپ کو کام کرنے کی سپیس مل رہی یا نہیں مل رہی۔ میرے خیال کے مطابق ویری آنیسٹ، اس وقت شاید کسی بھی پیپلز پارٹی کے کسی بھی دور، کسی عہد، کسی اور قیادت سے زیادہ سپیس ہے کام کرنے کی، کام کرنے والے موجود ہوں۔ اور ہم کوئی اپنے نظریات چھپاتے ہیں کسی سے؟ وہ چیئرمین سے لے کر نیچے تک کس کو نہیں پتا کہ ہم سوشلسٹ ہیں؟ کس کے علم میں نہیں ہے کہ ہمارے کیا نقطۂ نظر ہے؟ کس کے علم میں نہیں ہے کہ ہمارے کیا نظریات ہیں؟ لیکن اس کو دیکھنا یہ ہے کہ اس کو کس طرح سے لے کر آپ آگے جائیں، روایت میں کس طرح سے، روایت کس طرح سے پیچھے جاتی ہے، روایت بھی ایک جیسی تھوڑی رہتی ہے، کس طرح سے روایت پیچھے جاتی ہے، کس طرح سے روایت آگے جاتی، کس طرح سے۔ اور ٹیڈ نے کہا تھا کہ ایونٹس ول چینج دا کورس آف دا ماسز آف دا ورکنگ کلاس، واقعات اور واقعات ہی تبدیل کر دیتے ہیں، روایتوں کو بھی تبدیل کر دیتے ہیں، ان کی قیادتوں کو بھی تبدیل کر دیتے ہیں، چونکہ محنت کا طبقہ ان واقعات سے سیکھتا ہے، حادثات سے سیکھتا ہے، تجربات سے سیکھتا ہے، ان کو سیکھ کر آگے بڑھتا ہے۔ اور پھر اس حوالے سے کہ موجودہ حکومت اور پارٹی کے اندر آپ کیسے مداخلت کریں گے، ہاں موجودہ حکومت کے اندر رہتے ہوئے ہم مداخلت کر کے رہے، کوئی چوری کرنے جا رہے ہیں، کوئی پیپلز پارٹی کے اندر کوئی نقصان کرنے جا رہے ہیں۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ ہم نے کسی پیپلز پارٹی کے اندر جا کر کوئی ڈکیتی کر رہے ہیں، کر کیا رہے ہیں؟ اور کہیں ہم باہر سے آئے ہیں جو آ کر پیپلز پارٹی کے اندر مداخلت کرنی شروع کر دی، اس میں سے کچھ بھی نہیں، ہم نے وہیں آنکھ کھولی، ہم نے وہیں انقلاب کو پڑھا ہے، انقلاب کو سیکھا ہے، ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم پیپلز پارٹی کو کہہ رہے ہیں، اندر کھڑے ہو کر، پیپلز پارٹی کے اندر کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو یہ پالیسیاں محنت کش طبقے کے لیے اپنانی چاہیے اور یہ پالیسیاں نہیں اپنانی چاہیے۔ یہ پیپلز پارٹی کا بنیادی منشور کہہ رہا ہے، یہ بھٹو کی سوچ اور بھٹو کے نظریات کہہ رہے ہیں، یہ پالیسیاں غلط ہیں، یہ پالیسیاں ٹھیک ہیں، یہ ہم کہہ رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی کو سنا کر نہیں کہہ رہے، قیادت کو سنا کر نہیں کہہ رہے، محنت کش طبقے سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ یہ پالیسیاں آپ کے حق میں، یہ پالیسیاں آپ کے خلاف ہیں۔ اور ایک سوال آیا کہ اگر کوئی پرائیویٹائزیشن اور محنت کشوں کی مخالف پالیسیاں آتی ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ ہم نے پہلے بھی تاریخ میں پارلیمنٹ کے اندر یا پارلیمنٹ کے باہر جب محنت کش طبقے کے خلاف کوئی پالیسی آئی ہے، ہم اس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اب بھی کوئی پالیسی آئی تو اس کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ اور کہتے ہیں کہ اور کہتے और कहते हैं कि बिक गए। क्या बिके, क्या हासिल किया हमने? हां, पार्टी के अंदर जब जब जहां जहां हमें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा हम जाएंगे। हुकूमती ओहदे कल भी हमें ऑफर किए गए थे, गवर्नियों से लेकर बड़े बड़े ओहदे ऑफर किए थे, हमने ठुकरा कर उनको उधर फेंक दिया है, लेकिन पार्टी के अंदर जहां भी मौका मिलेगा आगे बढ़ेंगे। और कहते हैं बिके, हां हम बिके, लेकिन किसके लिए बिके, क्या कीमत है हमारी, किस कीमत पर बिके? हां हम बिके इस मुल्क के महरूम तबकात के लिए बिके, इस मुल्क के मजदूरों किसानों और नौजवानों के लिए बिके हम, वो कीमत है हमारी, उस कीमत पर बिके हम, मजदूरों और किसानों की कीमत पर बिके हम। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर बैठकर क्या क्या प्रोग्राम इनिशिएट कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मेहनत कशों को मुनज़म कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, नौजवानों को मुनज़म कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आम लोगों की बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आम लोगों की बात सुन रहे हैं। हम रابطे में हैं मेहनत कशों के अंदर, और इस मुल्क का मेहनत कश तबका अच्छी तरह जानता है कि पीपल्स पार्टी के अंदर उनका कौन है, उनका दुश्मन कौन है। पीपल्स पार्टी और इस मुल्क के मेहनत कश तबके से कोई चीज नहीं छुप सकती कि उनके लिए कौन लड़ रहा है, उनके खिलाफ कौन लड़ रहा है, जानता है पीपल्स पार्टी का मेहनत कश तबका, पीपल्स पार्टी जानती, मेहनत कश तबका जानता है कि कौन क्या है। और अभी अभी लड़ाई किधर है, अभी तो लड़ाई फूटी नहीं, अभी तो कुछ मौजूद ही नहीं है, तहरीक किधर है? कल को कह रहे थे तहरीक आ रही है, और हां पीपल्स पार्टी के अंदर अब यह भी देखना पड़ेगा कि एक दोस्त ने सवाल किया कि आप पीपल्स पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं, हां डिफेंड करेंगे हम, अगर हमला रियासत की तरफ से होगा तो हम डिफेंड करेंगे पीपल्स पार्टी को, अगर हमला बुनियाद परस्ती की तरफ से होगा हम डिफेंड करेंगे पीपल्स पार्टी को, अगर हमला दुश्मनों की तरफ से होगा हम डिफेंड करेंगे पीपल्स पार्टी को, और अगर लड़ाई मेहनत कश तबके की तरफ से होगी, अगर लड़ाई मेहनत कश तबके की तरफ से होगी पीपल्स पार्टी की किसी हुकूमत या किसी पॉलिसी के खिलाफ, तो तब हम पाकिस्तान के मेहनत कश तबके के साथ खड़े होकर उस लड़ाई को और आगे बढ़ाएंगे। यह तरीका कार है हमारा, इसलिए हम कोई हम की कोई कमरा में बैठकर लेफ्ट के उन नाम निहाद दानिश्वरों की तरह या एनजीओ के साथ मिलकर एनजीओ के लोगों को इस्तेमाल करके या चंद गाने वालों को इकट्ठे करके उन लोगों के जरिए हम इनकलाब की बात नहीं करते। हमें पता है मुश्किल, हम मुश्किल डगर पे चल रहे हैं, मेहनत कश तबकों को साथ मिलाना मुश्किल होता है, नौजवानों को जीत लेना आसान होता है, और नौजवानों को किसी म्यूजिक किसी फैशन की बुनियाद पर इकट्ठे कर लेना और बात है, मेहनत कश तबके को उनके ठोस हकीकी मसाइल के ऊपर उनको ये बावर कराना, उनको शऊर दिलाना और बात होती है। हां हम वही काम कर रहे हैं, इस मुल्क के अंदर मुश्किल काम कर रहे हैं, और ये फरीजा किसी ने हमें हमारे ऊपर जबरदस्ती नहीं की, यह हमने रास्ता शौक से चुना है, हमने खुद चुने, ये खुद इख्तियारी फेल है हमारा, और अगर खुद इख्तियारी फेल है तो इसके रास्ते में जितनी भी रुकावटें आएंगी वो हमारे गले के हार है, वो हमारे लिए इम्तियाज है, और जितनी गालियां हमें लेफ्ट से इन फिरका प्रस्तों से मिलेगी वो भी हमारे लिए तमगे हैं जिनको हम अपने सीनों पर सजाकर आगे बढ़ेंगे। हम कलाबाजियां नहीं खाते रोज, लाहौर में एक इलेक्शन तुम लोगों ने लड़वाया था, उस वक्त भी शायद अजबी को भी हमने मना किया था कि ना करो, ये बर्बाद कर देने वाला काम है, आप पीपल्स पार्टी से नाता तोड़ रहे हो। पहले तो उसका नतीजा क्या निकला था, शायद अजबी ने भी 157 वोट लिए थे, पहले कहते थे जीत जाएगी, फिर कहते थे 20,000 वोट लेगी, फिर कहते थे 10,000 वोट ले लेगी, 157 वोट मिले थे। वो कौन थी शायदा जबी, जिसके भाई को फांसी दिया गया, जो खुद शाही किले में रही थी, लेकिन जब लोगों के पास जाते हैं आप तहरीक से टूट कर जाते हैं, लोग इस तरह से नहीं करते। और कब लड़वाया था, जब एक तरफ 1990 में रियासत ने हमला किया था पीपल्स पार्टी पे और दूसरी तरफ से तुम हमला कर रहे थे, तो मेहनत कश तबके ने यह बात कबूल करने से इनकार की थी। हमने उस वक्त मना किया था कि ना करो। अब भी कहते हैं कि हम प्रोसेस के अंदर रहते हुए जरूर लड़ाई करेंगे, अगर इंतखाब में जाने का मौका मिला तो इंतखाब लड़ेंगे। एक को मिलेगा एक लड़ेगा, 100 को मिलेगा 100 लड़ेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। इसलिए तुम लोगों ने जो गलतियां की हैं, जो बर्बादियां की हैं, उसने इस मूवमेंट को आगे नहीं बढ़ने दिया। और फिर इलेक्शन से पहले क्या हालत थी आप सब लोग जानते हैं, लेकिन मुदाखलत के तरीकेकार के मुताबिक उसको समझने की जरूरत है कि हम अभी चंद हजार में हैं। जब आप चंद 100 हो तो कोई और तरीका होता है, चंद हजार हो तो और तरीका होता है, चंद लाख हो तो और तरीका होता है। अगर आप फर्ज करें इस मुल्क में मूवमेंट चलती है, तहरीक उभरती है और हमारे मेहनतकश तबकात के सारे बाशऊर हिस्से उसकी क्यादत में चले जाते हैं, उसकी क्यादत में चले जाते हैं, तो आप मुझे यह बताएं उस तहरीक का नतीजा क्या निकलेगा? तहरीक फिर कभी नाकाम नहीं होगी, मेहनतकश तबका कभी मायूस नहीं होगा, और अगर हम नहीं होंगे तो फिर कौन होगा? फिर ये जो आप सवाल भेज रहे हैं कि फलां तो ज़ियाउल्लाह में के साथ था, फलां ज़ियाउल्लाह के साथ था, फलां फलां जगह पे था, आप अगर सारे अपने अच्छे नजरियात को लेकर बाहर चले जाएंगे तो फिर साइंसी उसूल है, खला कभी खला नहीं रहता। आप नहीं पुर करेंगे, कोई और आकर पुर करेगा, फिर पुर होता है, हुआ पुर और फिर दोबारा होगा। हम तो एक तारीखी वो लड़ाई लेकर आगे चलते हैं, लेकिन यह बेसब्रपन से नहीं होता, इनकलाब बेसब्रपन से नहीं होता। जो बेसब्रे होते हैं वो अल्ट्रा लेफ्टिज्म की खाई में जा गिरते हैं, वो अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं, वो सिर्फ गालियां देते हैं, इनकलाब से दूर चले जाते हैं, उनका फिर इनकलाब से कोई वास्ता नहीं रहता। और तारीख में ऐसा बार बार हुआ है। प्लेखनोव लेनिन का उस्ताद था और वो फिर उस्ताद जो था उसने जो कुछ किया वो तारीख में आपके सामने। जरूरी नहीं हर वक्त उस्ताद ठीक होते हो, उस्ताद गलतियां भी करते हैं तो बर्बादियां भी करते हैं। इसलिए मैं ये समझता हूं कि जब भी इस कोर्स के अंदर वापस आएगा मेहनत का तबका, मैंने पहले भी कहा था मसला ये नहीं पीपल्स पार्टी आज क्या है, मसला ये है कि पीपल्स पार्टी कल क्या होगी। और जो लोग कहते हैं कि रवायतें टूट भी जाती हैं, नहीं टूटी। आप जब मुर्सा भुट्टो लैदा हुआ था तब भी कहते थे कि यह संजीदा दरार है, यह पड़ जाएगी, हम तब भी कहते थे कि नहीं पड़ेगी। आप उस वक्त भी गलती पे थे, आप आज भी गलती पे हैं, क्योंकि मेहनत का तबका दोबारा जब वापस आएगा पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से जिद्दोजहद का आगाज करेगा और एक रवायत के तौर पर इसके अंदर जब वापस आएगा तो इस बार हम समझते हैं कि इस बार इस मुल्क के अंदर अगर अब के पीपल्स पार्टी के अंदर जब भी लड़ाई शुरू होगी, क्योंकि फैसला इस हुकूमत के अंजाम पे है या इस वक्त की क्यादत के अंजाम पे है कि रियासत के हाथों उसका अंजाम क्या होता है, पीपल्स पार्टी का अंजाम क्या होता है। फिर आप लोगों ने देखा कि उसके नतीजे क्या निकलते हैं मुल्कों के अंदर, तारीखों के अंदर, समाजों के अंदर। फैसला इस वक्त इस बुनियाद पर होने, अगर कोई रियासत फिर कोई उस किस्म का इकदाम करती है जो एकदम उसने भुट्टो साहब जैसा किया था या बीबी जैसा किया था, अगर ऐसे इकदाम की तरफ बढ़ती है और बढ़ सकती है, इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। अगर इस इकदाम की तरफ बढ़ती है, ऐसे किसी काम की तरफ बढ़ती है, तो फिर इस मुल्क के अंदर फैसला को लड़ाई भी हो सकती है। बात होगी हुकूमते फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इस मुल्क का मेहनत का तबका मिलकर किसी इंकलाबी तहरीक की सूरत में इस समाज को तब्दील करने की तरफ भी बढ़ सकता है और उसमें हमारा रोल होगा। अगर हम उस वक्त खड़े होंगे उस वक्त उस मुकाम पर, तो हम मेहनत कश तबके को साथ लेकर इस मुल्क के अंदर तब्दील कर देंगे, इस मुल्क को, इस मुल्क के हालात को तब्दील कर देंगे, इस मुल्क के समाज को तब्दील कर देंगे। चूंकि ये कहा गया है कि जब तक इस मुल्क के अंदर पीपल्स पार्टी कहती है, पीपल्स पार्टी का बुनियादी मंसूर कहता है कि जब तक इस मुल्क के अंदर आप मुकम्मल तब्दीली नहीं कर लेते तब तक कोई इस मुल्क के अंदर कोई बुनियादी तब्दीली नहीं होने वाली। हमने इस मुल्क के अंदर उस बुनियादी तब्दीली को लेकर आगे बढ़ना है। और 68-69 की तरह क्या हुआ था, 68-69 में यही हुआ था। 68-69 के अंदर, 68-69 के अंदर क्या था इनकलाब, 68-69 क्या था, एक इनकलाब था। क्या होता है इनकलाब, जब इस मुल्क का मेहनत का तबका इस समाज के मरवजा पैदावारी रिश्तों को मानने से इनकार कर दे। क्या किया था लोगों ने, जमीनों पे हारियों ने कब्जे कर लिए थे, फैक्ट्रियों पे मजदूरों ने कब्जे कर लिए थे, लोगों ने बसों और वैगनों को किराया देने से इनकार कर दिया था। और क्या होता है सोशलिज्म, यही होता है जब तमाम तर ज़राए पैदावार लोग अपनी इज्तमाई मिल्कियत में लेना शुरू कर दे तो इनकलाब का आगाज हो जाता है। उसको उसके अंजाम तक पहुंचाना मेहनत कश तबके की क्यादत का फरीजा होता है। और अब क्या अगर हुआ, अब क्या अगर वो लड़ाई होती है 68-69 की तरह वापस, पीपल्स पार्टी या इस मुल्क का मेहनत का तबका वापस लौट के जाता है तो मैं कहता हूं कि हमारी मौजूदगी इस मुल्क के अंदर एक इनकलाब कर देगी। वही इनकलाब जो इस मुल्क के तमाम तर वसायल को अपने हाथों में लेकर इज्तमाई मिल्कियत का को पैदा करके अपने कब्जे में लेकर इस मुल्क के हमेशा 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 के लिए भूख, बीमारी, नाइंसाफी, अनपढ़ता और तमाम तर उन नाइंसाफियों का खात्मा कर देगा। यहाँ पे कोई ऊंच नीच नहीं होगी, कोई तुबकाती तफरीक नहीं होगी, कोई इस्तेसाल नहीं होगा। उसके लिए हम जिद्दोजहद कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। कॉमरेड्स, आपने घबराना नहीं है, हालात ऐसे आते हैं। 1914 में 1905 के इनकलाब की नाकामी के बाद बोल्शेविक पार्टी की मेंबरशिप सिर्फ 37 कॉमरेडों पर मुश्तमिल रह गई थी 1914 के अंदर। फिर 1937 कॉमरेडों ने 1917 में बढ़कर आगे बढ़कर इनकलाब कर दिया था, इनकलाब को लीड कर दिया था, सोवियत यूनियन के अंदर इनकलाब कर दिया था। और हम तो हजारों में हैं, पीपल्स पार्टी के अंदर वो पोटेंशियल मौजूद है। इस मुल्क के लाखों करोड़ों मेहनत कश उसकी तरफ इनकलाबी सोच से देख रहे हैं। हमें वहां पर मुदाखलत करके इस मुल्क के अंदर फैसला को इनकलाब करना है। और मुझे यकीन है, और मुझे यकीन है इस मुल्क के मेहनत कश तबके पे कि वो इनकलाब जरूर करेगा, यहीं पे होगा। ये धरती देखेगी इनकलाब, और ये धरती इनकलाबियों के पांव तले धर धर धड़केगी, और हम देखेंगे, सब देखेंगे।
मंजूर की इस शानदार समअप के बाद